मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत हम लोग कल वाले विषय को ही आगे बढ़ाएंगे। और कल वाला विषय क्या था, मुझे लगता है कि आपको याद होगा, और अगर याद नहीं है तो याद रहना चाहिए। खैर, आज मेरे पास तीन छोटी छोटी खबरें हैं जो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। खबरें, सूचना, जो भी कह लीजिए। पहला यह है कि अखबारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर छपी है, हालांकि अभी इसे मैच्योर होना है, लेकिन खबर है। और वो ये है कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है, यानी कि इतनी मजदूरी दी ही जानी चाहिए ना, उसका अपना एक फार्मूला है। अब जो बकायदे सरकार विचार कर रही है कि ये जो मिनिमम वेज है, इसकी जगह पर अब लिविंग वेज जैसा कोई फार्मूला तैयार किया जाए। लिविंग वेज यानी कि इतनी मजदूरी कि उसका जीवन यापन तो हो सके। अभी जो मिनिमम वेजेस हैं उसमें होता यह है कि भाई आपको इतना देना है, और एक बार जब वो फिक्स हो जाती है ना, तो फिर बहुत लंबे समय तक उसे रिवाइज नहीं किया जाता। और इस बीच में पता लगा कि अब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वेजेस यानी कि उन्हें मजदूरी उतनी ही मिल रही है। तो अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि उस मजदूर की जो परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति है, वो कम हो गई। अगर उसका मिनिमम वेज आज भी 300 रुपए है तो उतना सामान नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि इस बीच में मुद्रा स्फीति हो गई है, यानी कि महंगाई बढ़ गई है। तो इसका असर सीधे सीधे उसके जीवन स्तर पर पड़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड पर अगर उसका असर पड़ता है तो डेफिनेटली फिर जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसी बातें आती हैं सामने, तो हमारा स्थान काफी नीचे चला जाता है। और बकायदे जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये बताया भी है कि इस बीच में जो कोरोना का पीरियड रहा है, तो पूरी की पूरी दुनिया में जो मंथली वेजेज हैं, जिनमें मिनिमम वेजेज भी शामिल हैं, उनमें लगभग 0.9% की कमी आई है इन रियल टर्म्स। तो दोस्तों, अब भारत सरकार भी सोच रही है कि नहीं, इसे जीवन लायक जो मजदूरी होनी चाहिए उसके रूप में अब प्रचलित किया जाए। और ऐसा हो जाता है तो उम्मीद की जा रही है कि जो हमारा जीवन स्तर है, खासकर जो गरीबी रेखा के आसपास रहने वाले लोग हैं, चाहे वो उसके नीचे हों या ऊपर हों, बेहतर हो सकेगा। और आप जानते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य यह भी है, और भारत लगातार इस कोशिश में है कि कैसे अपने इस लक्ष्य को पाने के वह करीब पहुंच सके। और दोस्तों, एक ऐसे समय में जब भारत G20 जैसे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है, डेफिनेटली इस तरह की बातें कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत तो संकोच में डाल ही देती हैं कि विश्व के इतने बड़े संगठन का हम नेतृत्व कर रहे हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति इतनी बुरी है। तो इसे थोड़ा सा आप एनालिटिकल तरीके से जानने और समझने की कोशिश कीजिएगा। डेफिनेटली इस पर एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, आज भी आए हैं, एक दो जो कमेंट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अखबारों में आपने रिमोट वोटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। खबर यह है कि जो लोग उस दिन चुनाव के दिन, जैसे मान लीजिए कि आज मतदान है, मध्य प्रदेश का चुनाव होना है, विधानसभा का या संसद के ही चुनाव होने हैं, तो मैं भोपाल में रहता हूं, तो मेरा जो वोटिंग लिस्ट में नाम है वो भोपाल के ही किसी एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पर है, और अगर मुझे वोट देना है तो मुझे उसी पोलिंग बूथ पर जाना होगा, वही लिस्ट में मेरा नाम होगा और मुझे मतदान करने दे दिया जाएगा। लेकिन सपोज मान लीजिए कि मैं आज के दिन दिल्ली में हूं या कहीं भी हूं, तो सीधी सी बात है कि फिर मैं वोट नहीं दे सकता, मुझे उसी पर ही जाना होगा जहां मेरा नाम है। तो ये देखा गया कि अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं तो लगभग दो तरह के आंकड़े, 30 करोड़ लोग मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। 30 करोड़ लोग, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, चला गया है, इसके बाद वहां वोटिंग लिस्ट में उसने अपना नाम अपडेट नहीं कराया है, क्या जरूरत है, वो समझता है। प्रवासी लोग कितने होते हैं हमारे यहां, प्रवासी मजदूर कितने होते हैं, क्या हम एक मजदूर से उम्मीद कर सकते हैं कि वोट देने के लिए वो दिल्ली को छोड़ करके और छत्तीसगढ़ के किसी अपने गांव में पहुंच जाएगा या शहर में पहुंच जाएगा कि भैया केवल वोट देना है, क्या वो अपनी मजदूरी का नुकसान करेगा, क्या इतना है। तो एक कारण जो मतदान का प्रतिशत बहुत कम हो रहा है, उसका यह भी माना जाता है। तो अब एक रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार किया गया है, मतलब आप कहीं भी रहें, बस आपको वहां के जो पोलिंग बूथ होगा वहां जाना होगा और आप अपना मतदान कर सकेंगे। ये खासकर जो भारतीय मतदाता होंगे ये उन्हीं के लिए है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी इसे लागू होने में थोड़ा सा समय लगेगा। चुनाव आयोग ने इसे तैयार कर लिया है। अब जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके सामने इस मशीन का प्रदर्शन होगा, उनकी सहमति ली जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट ईयर जो विधानसभाओं के चुनाव होने हैं तब शायद ये लागू हो जाए। तो इसे आप चुनाव सुधार की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मान सकते हैं, एक अपडेटेड नॉलेज कह सकते हैं। दोस्तों, इससे कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बातें की थी, है ना, कि कैसे इससे लगभग 81 करोड़ लोगों को लाभ होगा और सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का लगभग खर्च आएगा। इसको लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड का आज एक आर्टिकल है, मुफ्त खाद्यान्न योजना, मतलब ये राजकोष पर भारी पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी तो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो तो बढ़ेगा, सरकार कहां से पैसा लाएगी। इसको लेकर के ये लेख लिखा गया है, ऐसा किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इसका क्या उपाय हो सकता है। थोड़ा सा कठिन तो जरूर है, आंकड़े इसमें बहुत ज्यादा हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि अगर आपके पास इकोनॉमिक्स की सामान्य समझ है तो आप शायद इससे फायदा उठा सकेंगे, लेकिन फिर भी जो शुरुआत इसकी की गई है उसके कुछ अंश आपके लिए उपयोगी रहेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर बाद की चीजें आपके पल्ले नहीं पड़ रही हैं तो बहुत ज्यादा निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा, अपने पर खींचिएगा मत, छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ खबरें थी, आइए अब मुख्य विषय के ऊपर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कल हम लोग एक प्रश्न को हैंडल कर रहे थे वन्य जीव संरक्षण के बारे में, कुछ स्थितियों की चर्चा मैं कर चुका हूं, अब आइए आगे इसके चैलेंजेस को देखते हैं। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। मैंने कहा ना कि सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, इसलिए मैंने कहा कि कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस ये है कि एक जीव है, उसकी जगह आप बाघ को रख लीजिए, टाइगर, टाइगर है, और सरकार इस बात को लेकर के चिंतित है कि टाइगर बचाए जाने चाहिए क्योंकि ये लुप्त हो रहे हैं, इनका शिकार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, संख्या कम होती चली जा रही है। तो सरकार कानून बना रही है, सरकार ने कई कानून बनाए। अब वो जो रक्षा है उसकी, देखिए टाइगर की जो रक्षा होनी है और कानून जिस तरह से लागू किए जाते हैं और फिर कानून लागू किए जाने के बाद जिस तरीके से उन कानूनों का नाजायज फायदा उठाया जा सकता है, वो सारे अपने दिमाग में लेकर के आइए, क्योंकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं ना। और देखिए, आप कह सकते हैं कि सर क्या इतना समय हमें वहां मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में कि हम इतना सोच सकेंगे जितना आप यहां बता रहे हैं? अब बिल्कुल आपको समय नहीं मिलेगा, लेकिन यहीं तक तो आपको पहुंचना है, अपने दिमाग को इतना ही तो ट्रेंड करना है, तभी मैं ये मान करके चलूंगा कि आप सिविल सर्वेंट बनने लायक हो गए हैं, और यूपीएससी भी यही मान करके चलती है। तो सीधी सी बात है कि वो अपने कानून में किसी तरह की ढील नहीं देगी कि आपको उसका आधार लेकर के और ये जो टाइगर है इसकी हत्या करने का अधिकार मिल जाए, छूट मिल जाए। सामान्य सी बात है, ये कॉमन सेंस है। अब आप देखिए कि वो किस तरह के विकल्प यहां दे रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट पहला है कि वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। जी हां, सरकार की ही संपत्ति है, यह प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वन्य जीव सरकार की संपत्ति है, ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं लगना चाहिए आपको। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा ये सोचने लगेंगे कि हमने हाथी पाल लिया तो हमारी संपत्ति हो गई, लोग तो पाल लेते हैं, लोग हिरण पाल लेते हैं, लेकिन खासकर जो वन में रहने वाला जो जीव है वो तो सरकार की ही संपत्ति है ना। आपने उसे डोमेस्टिक बना लिया है तो डोमेस्टिक बना लिया है तो बना लीजिए, कोई बात नहीं है, उसके लिए भी सरकार के अपने प्रोविजंस हैं। लेकिन सामान्यतः जो वन्य जीव है, जो वन में रह रहे हैं, वो सब के सब सरकार की संपत्ति, चाहे वो चूहा ही क्यों ना हो, ठीक है, जीव ही क्या, वन में जो भी रह रहा है वो सरकार की संपत्ति, पेड़ पौधे भी सरकार की संपत्ति है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी उलझन हो कि जब वो जंगल में है तब तो संरक्षण का हकदार है, लेकिन अगर वो जंगल से बाहर निकल गया तब वो हकदार है या नहीं है। अब यहां आपको कॉमन सेंस लगाना है, अगर वो जंगल से बाहर निकल गया तो क्या आपको अधिकार मिल जाता है कि आप उसकी हत्या कर दें? संरक्षण का हकदार का तो यही मतलब है ना कि फिर हकदार नहीं है, उसे मारा जा सकता है, क्योंकि ये तो जीव है, ये तो जानते नहीं है कि भैया हमारी ये सीमा रेखा है, यहां ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, अब इसको पार नहीं करना है, ये तो घूमते रहेंगे और हमारे शहर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जंगल कटते चले जा रहे हैं, इनके जो गलियारे होते हैं वो खत्म होते चले जाते हैं, तो ये तो बाहर निकल जाते हैं। ऐसी खबरें आप अखबारों में बीच बीच में पढ़ते भी होंगे। तो हम क्या करते हैं? क्या हम उन्हें मार डालते हैं? या यहां तक कि वन विभाग भी अगर आता है तो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, जिंदा पकड़ने की कोशिश करता है, ये नहीं कि जो पब्लिक है उसे मार डाले। और अगर हम इतनी छूट दे देंगे तो फिर तो पता लगेगा कि लोग मारते रहेंगे और कह देंगे कि भैया ये तो जंगल से बाहर निकल आया था, गांव में पहुंच गया था, हमने मार दिया। नहीं, वो समान संरक्षण का हकदार है, याद रखिए। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है अगर इस पर आप गंभीरता से सोचेंगे तो, और मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से प्रश्नों को सोच विचार कर हल करने की कोशिश करें ताकि आपका दिमाग उलटने पलटने का आदि हो जाए, अभ्यस्त हो जाए कि कैसे सही उत्तर निकाला जाता है। तभी उसकी आदत पड़ेगी, उसको रास्ते दिखाई देने लगेंगे ना कि नहीं इसको तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसको तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसको तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। नहीं तो आपको राजमार्ग के सिवाय कोई दिखाई ही नहीं देगा, राजमार्ग मतलब किताब, जबकि जो उत्तर मिलेंगे आपको पगडंडियों से मिलेंगे, उन पगडंडियों पर आपका दिमाग कभी गया ही नहीं है सफर करने के लिए, यात्रा की ही नहीं है उसने, तो कैसे दिखाई देगा कि नहीं इसका तो उत्तर ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो प्लीज ये आदत डालिए, रोज 10-15 मिनट इसके लिए निर्धारित कर लीजिए कि मैं 1-2 प्रश्न केवल इसी आधार पर हल करने की कोशिश करूंगा। आप देखिएगा कि 1 साल के अंदर आपका माइंड कितना ब्रिलियंट हो जाता है, आप महसूस करेंगे। और जब आपको लगे कि हां सच में हो गया है तो प्लीज मुझे सूचित भी करें, अच्छा लगेगा। तीसरा है दोस्तों कि किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। अब आप देखें कि स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 कहीं ना कहीं एक ही जैसे हैं। संरक्षण का हकदार है और मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। संरक्षण का हकदार है, अगर आप कहते हैं कि हाँ वो संरक्षण का हकदार है, इसका मतलब यही हुआ ना कि उसे आप मार नहीं सकते। और तीसरे में क्या दिया जाए कि मार जाने का पर्याप्त आधार है? नहीं, आधार नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो 2 और 3 बिल्कुल सेम है, एकदम एक ही है। अब आपके पास 2 सूत्र मिल गए। देखिए तीसरा है आधार नहीं है, पर्याप्त आधार नहीं है, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, ठीक है। चलिए इससे आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए 1 पे आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं यार कि एकमात्र सरकार की संपत्ति है, नहीं है, लोग पाल भी लेते हैं तो उनकी संपत्ति हो गई, वो सरकार की संपत्ति कैसे हुई। दिमाग कभी कभी फालतू की चीजें सोचने लगता है ना, कि सोच रहे हैं आप। तो अब आपके पास जो दूसरा बिंदु मिलता है वो ये है कि भाई ये जो दूसरा स्टेटमेंट है और जो तीसरा स्टेटमेंट है ये तो दोनों एक जैसे हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों सही हैं तो 2-3 होने चाहिए, और अगर ये दोनों गलत हैं तो 2-3 होने चाहिए। तो मैं जरा ढूंढूं कि क्या 2-3 किसी में है। तो जब आप देखते हैं ग्रुप को देखते हैं तो 2-3 तो किसी में है ही नहीं। अगर 2-3 किसी में नहीं है तो सीधी सी बात है कि अब आपको देखना होगा कि 1 किसके साथ है। तो 1 1 और 2 भी है, 1 1 और 3 भी है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि 2 और 3 में कौन सा सही है। तो फिर आपको पता लगेगा कि नहीं, जो 2 है वो सही है, क्योंकि वो समान हकदार है और किसी को इसके आधार पर उन्हें हत्या कर देने का अधिकार नहीं मिल जाता है। तो आपका 1 वाला जो संकट है वह भी यहां बड़े आराम से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपके सामने कुछ तरीके बताए हैं, प्लीज आप इन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं शुभम कुमार समस्तीपुर बिहार से और स्नेहलता पांडे, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं, 2 दिनों के बाद फिर आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।